मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 1 दिसंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों एक छोटी सी सूचना है और यह सूचना है हमारे ऑनलाइन क्लासेस के जो पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑडियो आप लोगों को भेजा गया है आप लोगों के मेल पर, तो प्लीज आप सब अपना अपना मेल एक्सेस कर लें। वहां आपको एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस मिले जैसा मिलेगा, वो आपके एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर के है और प्लीज उसे सुनिएगा जरूर। हो सकता है कि सुनने के बाद आपको एक नई अंतर्दृष्टि मिले और एक नई ऊर्जा का भी एहसास हो। फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय में मैं आपसे रिसेशन मंदी के बारे में कुछ बातें करूंगा और इसके माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स की तैयारी पर भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। सोमवार को तो छुट्टी थी तो हम लोग कोविड के बारे में अक्सर सोमवार को जो बातें करते थे वो नहीं कर पाए, तो उस क्षति की आज थोड़ी सी पूर्ति कर लेते हैं क्योंकि यह एक इम्पॉर्टेंट विषय है और खासकर मैं पहले भी बता चुका हूं और आज भी बताना चाहूंगा कि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं नहीं बताता हूं, मैं सिर्फ इसलिए बताता हूं कि हो सकता है कि कोविड को लेकर के अगर आपके मन में निराशा घर कर गई हो तो उसमें थोड़ी सी आशा की एक झलक आपको मिल सके। और वो झलक कैसे मिलेगी, जब मैं आपके सामने यह बात रखूं कि कैसे हम धीरे धीरे अब इस पर नियंत्रण पाते जा रहे हैं। और ये कोई उपदेश की भाषा नहीं है, ये तथ्य की भाषा है। मैं तथ्य आपके सामने ऐसे रखता हूं और ऐसे क्या सरकार ही देती है जो सच भी है कि आप ये जान सकें कि नहीं स्थितियां बेहतर होती चली जा रही हैं। तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जो हमारे स्वस्थ होने की दर है अब वो बहुत बेहतर हो गई है, 93.81% हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। रोजाना आप देख रहे हैं कि संक्रमित होने वालों की संख्या भी कम होती चली जा रही है। किसी समय जो हाईएस्ट जो दर थी उससे अब हम आधे पर आ गए हैं और हमारे यहां जो मृत्यु दर है वह भी बहुत कम है दुनिया के दूसरे देशों से। परसेंटेज के हिसाब से तो 1.45% है। आज अखबारों में आंकड़ा दिया हुआ है कि 10 लाख में से हमारे यहां जो मृत्यु दर है वो 98 है, जबकि आप देखिए कि अमेरिका में 813 है, 813, और उसकी जगह अगर हमारे यहां 98 है तो बहुत कम है। केवल अमेरिका की बात ही नहीं, आप ब्रिटेन का डेटा उठा करके देख लीजिए, फ्रांस का डेटा उठा करके देख लीजिए, जर्मनी का, ये तो सब ऐसे देश हैं जो विकसित देश हैं जहां बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जहां हेल्थ की बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, वहां तो सच पूछे तो मृत्यु दर कहीं ना कहीं हमसे बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन हमसे कई गुना ज्यादा है, मतलब 7 गुना 8 गुना ज्यादा है। इसका मतलब हम दो तरीके से इसे समझ सकते हैं। पहला तो यह कि हमारे यहाँ के लोगों की जो इम्यून पावर है वो ज़्यादा बेहतर है और दूसरा यह कि हमारे यहाँ के प्रशासन ने इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी खबरें कोविड के बारे में थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी इसके खतरे के बढ़ने के लिए आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी सावधानी बरतें। और पूरी सावधानी के रूप में 3 बातें कही जाती हैं, मैं भी वो बातें दोहराना चाहूंगा। हमेशा मास्क लगाएं, खासकर जब भी भीड़ भरे एरिया में जा रहे हैं, बाजार में, घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। लौटने के बाद बकायदे साबुन से हाथ धोएं और अगर भीड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो हर संभव कोशिश होनी चाहिए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वह बनी रहे। फिलहाल तो यही सबसे बड़ा वैक्सीन हम लोगों के पास उपलब्ध है। फ्रेंड्स एक खबर आपने अखबारों में पढ़ी होगी, हालांकि 2 अलग अलग खबरें हैं लेकिन जुड़ी हुई है चीन से ही है। पहला तो यह है कि चीन ने अब यह घोषणा की है कि वह नेपाल को सैन्य सहायता देगा, सैन्य सहायता देगा यानी कि वो हथियार देगा, हथियारों की आपूर्ति करेगा, सप्लाई करेगा और साथ ही वहां की सेना को ट्रेनिंग भी देगा। ये वैसे तो सामान्य सी खबर है लेकिन हमें इसे बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि आप देखिए कि चीन और नेपाल ये दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं और आपके सिलेबस में बकायदे ये मेंशन किया हुआ है कि पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध हैं उन पर हमें विशेष ध्यान देना है। और जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी पाएंगे कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध के बारे में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। नेपाल से भारत के संबंध बहुत ही ऐतिहासिक संबंध रहे हैं लेकिन पिछले कुछ समय से उसमें खटास आने लगी है और नो डाउट कि खटास आने में या खटास करने में, पैदा करने में चीन का बहुत बड़ा रोल रहा है। चीन जिस तरीके से इस पूरे एरिया में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है उसका यह एक प्रमाण है। तो यह भारत के लिए एक चिंता का कारण है। इससे पहले भी 1989 में ऐसी स्थिति आई थी और उस समय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। तो जब नेपाल ने इसे स्वीकार किया था तो हमारे प्रधानमंत्री ने आर्थिक नाकेबंदी की थी, नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी की थी, एक तरह से सजा, मतलब आप ये कह लीजिए कि उसका विरोध किया था इस रूप में। अब क्या स्थिति होगी क्या नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन डेफिनेटली इससे साफ लग रहा है कि जो नेपाल है वह चीन के साथ अपने संबंधों को घनिष्ठ बना करके, या यूं कह लीजिए कि चीन के कार्ड का इस्तेमाल करके जो भारत पर उसकी जो निर्भरता है उसको कम करना चाह रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और ये भारत के लिए एक चुनौती भी है। लेट अस सी। इसी के साथ ही साथ एक और जो दूसरी खबर है जो अभी अखबारों के जरिए, चीन के जो अखबार हैं उनके जरिए जो खबर मिली है वो ये कि चीन जो है भारत से जो का जो बॉर्डर एरिया है वहां एक बांध बनाने जा रहा है। आपको मालूम है कि चीन खासकर भारत से सटे बॉर्डर में लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए। आप देखते हैं कि लद्दाख वाले एरिया में क्या है, इधर अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर एरिया में वो कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो यहां जो खबर है वो ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आपने सुना है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ये तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से निकलती, याद रखिए तिब्बत का जो ऑटोनोमी एरिया है वहां से ये नदी निकलती है और वहां इसका जो नाम है उसका नाम यारलुंग जांगबो, वहां से जब निकलती है तो इसको तिब्बत भाषा में यारलुंग जांगबो कहते हैं और वहां से जब वो नदी निकलती है इसके बाद आगे बढ़ती है। तो चीन ने यह घोषणा की है कि वहां एक बहुत बड़ा बांध बनाने जा रहा है। देखिए जब वहां वो बांध बना लेगा तो सीधी सी बात है कि वहां का जो जल है वो नियंत्रित होने लगेगा और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है और खासकर बांग्लादेश ये वहां के जल पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं और चीन पहले ही ऑलरेडी उस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर 11 पनबिजली परियोजनाएं चला रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उसके पहले से ही काम कर रहे हैं। भारत में अब जनरल स्टडीज की दृष्टि से हम देखें, ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं, कभी कभी प्री में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भारत में यह अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है यह नदी, तो अरुणाचल प्रदेश से यह एंटर करती है, उस समय अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग कहा जाता है, फिर ये असम में आ जाती है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और फिर असम से होकर के ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है और जो बांग्लादेश है उन दोनों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेट अस सी। लेकिन ये चूंकि दोनों चीन से जुड़ी हुई घटनाएं थी, का संबंध नेपाल से भी था, तो मुझे लगा कि इसे अपडेट किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोगों ने एक और खबर पढ़ी होगी और वो ये है कि जो ईरान के एक जो परमाणु वैज्ञानिक है, चीफ परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जादेह है, उनकी हत्या हो गई है और ईरान ने इसके लिए जो आशंका व्यक्त की है, जो आरोप लगाया है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसराइल के ऊपर लगाया है, इसराइल को इसके लिए जिम्मेदार लगाया है, जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिका का भी हाथ है, जो भी है। आपको ध्यान होगा कि जब ट्रंप अभी भी यही है, ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे और उसका कारण यही था कि आरोप लगाया जा रहा था ईरान पर कि वो परमाणु अस्त्र बना रहा है, इससे विश्व की जो शांति है उसको खतरा हो सकता है और भारत को भी फिर इस आर्थिक प्रतिबंध के कारण ईरान से जो अपना पेट्रोलियम आयात करता है भारत उसमें बहुत ज्यादा कटौती करनी पड़ी थी, लगभग बंद सा करना पड़ा था। यह घटना आपको याद होगी, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब देखिए, अब ट्रंप तो कुछ ही दिनों के लिए राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन अब नए राष्ट्रपति आए हैं, अब वो देखते हैं कि किस तरीके से अब वो ईरान के इस मामले को सुलझाते हैं, क्योंकि ये ईरान का ही मामला नहीं है, ये बल्कि पूरे के पूरे जो मध्य पूर्व एशिया का क्षेत्र है उसका मामला है, जिसके साथ एक प्रकार से आप यूं कह लीजिए कि एक तनाव की स्थिति उस एरिया में भी बनी हुई है और अमेरिका के साथ भी बनी हुई है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो आगे चल करके चूंकि यह बात अभी बढ़ेगी, जिसकी शुरुआत ये जो परमाणु वैज्ञानिक है उनकी हत्या से फिर से हो गई है, तो ये आपके दिमाग में दर्ज होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और मुख्य विषय है कि इस बीच में आंकड़े आए हैं, चूंकि 3 दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और उस आंकड़े में जो GDP के हमारे आंकड़े आए हैं वो आपको मालूम होगा कि वह अब -7.5% है। इससे पहले की तिमाही में जब आंकड़े आए थे वो था लगभग 24%, -24%। चूंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जा सकता, लेकिन एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो हमारे ऑनलाइन के पेड स्टूडेंट हैं, वो खासकर तीन लेक्चर्स जो उनको प्रोवाइड किए गए हैं तीन अलग अलग टॉपिक पर, उसको ध्यान में लाए। मैं ये बात उनके लिए कह रहा हूं कि जो ऑलरेडी लेक्चर्स सुन चुके हैं और जो अभी इस विषय को नहीं सुन रहे हैं, वो अपने कंटिन्यूटी को रखें, मतलब ऐसा शिफ्ट ना करें कि नहीं नहीं हम इस लेक्चर को सुन लेते हैं, उसमें आप बिल्कुल भी बाधा ना डालें, आप अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें। एक लेक्चर आपको नेशनल इनकम पे के ऊपर दिया गया है, जिसमें जीडीपी की बात कही गई, एनडीपी की बात है, जीएनपी की बात है, एनएनपी की बात है, बहुत सटीक तरीके से समझाया गया है। इसके बाद फिर इकोनॉमिक साइकिल के बारे में आपको बताया गया, जिसमें रिसेशन और उछाल और प्रतिसार ये सब की बात हम करते हैं, इकोनॉमिक साइकिल इसका नाम है। और इसके बाद है राष्ट्रीय आय की गणना, जिसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात की जाती है, नेशनल इनकम की बात की जाती है कि उसकी गणना कैसे की जाती है, जिसके अंदर हम इनकम मैथड को लेते हैं, एक्सपेंडिचर मैथड को लेते हैं, आउटपुट मैथड को लेते हैं, इन सब के बारे में बहुत विस्तार के साथ समझाया गया है। यहां मैं आप सबसे खासकर एक विशेष बात शेयर करना चाह रहा हूं, और इस बात को जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करता है। देखिए, ये दूसरी तिमाही है जब हम देख रहे हैं कि जो हमारी जीडीपी है वो माइनस में है, जो भी हमारी जीडीपी चल रही थी उससे माइनस में है। ठीक, इसका मतलब है कि अब हम वाकई में एक टेक्निकल रिसेशन के दौर में एंटर कर गए हैं, मंदी के दौर में आ गए हैं, और ये मंदी एक तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक स्थिति की ओर संकेत करती है। ये बात अलग है, ठीक है कि चलिए इसका एक विशेष कारण रहा है, एक असामान्य स्थिति में ये मंदी आई है कोरोना के चलते, लेकिन और आर्थिक मंदी तो आ गई, और अगर आर्थिक मंदी ने हमारी अर्थव्यवस्था की नींव को तोड़ दी है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि कोरोना के कारण वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, नहीं आएगी। सरकार अपने ढंग से कोशिश कर रही है, आप देख रहे हैं कि डिमांड जनरेट करने के लिए अलग तरीके के पैकेज दिए जा रहे हैं, लेकिन वो भी तो अर्थव्यवस्था से ही हो रही है, तो दीवार को नुकसान तो पहुंच गया है, तो नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। यहां आपसे जो मैं स्पेशली बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जब आप रिसेशन की डेफिनेशन देखते हैं, तो रिसेशन की डेफिनेशन होती क्या है? इसकी जो डेफिनेशन होती है, दो तिमाही के परिणाम अपने पूर्ववर्ती परिणामों की तुलना में कमजोर होते हैं, तो रिसेशन आ गया, ठीक है। लेकिन यहां मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो जीडीपी के बारे में बताना चाह रहा हूं कि जब हम जीडीपी की परिभाषा देखते हैं तो जीडीपी क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी परिभाषा क्या है, सकल घरेलू उत्पाद की। किसी भी अर्थव्यवस्था में, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं और फिर उसके पॉइंट्स बताऊंगा, और आपको इसी तरह से अपनी तैयारी भी करनी चाहिए, और लेक्चर में बहुत विस्तार के साथ और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मैंने समझाया है। किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, एक वर्ष में जो टाइमिंग्स क्या है, वन ईयर में उत्पादन, याद रखिए इसका संबंध प्रोडक्शन से है, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन समस्त वस्तुओं, उस एक साल में जितनी वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ और जितनी सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ के अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग, अंतिम मौद्रिक मूल्य, ये अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या हो गया, रट लेने से बात नहीं बनेगी, आपको समझना होगा। अंतिम मौद्रिक मूल्य, आपने एक कार बनाई, ठीक है, आपकी लागत आ गई, वो कार आपकी 3 लाख रुपए में बन गई। अब आप गणना करेंगे कि अगर आपने 100 कार बनाई है तो 300 लाख रुपए का आपने प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन ये गणना में नहीं आएगी, कार बिकी कितनी, अंतिम मौद्रिक मूल्य, उससे गणना होगी। अगर आप 3.5 लाख में बेच रहे हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि उस वस्तु की मूल्य की जो गणना होगी या सेवाओं की जो गणना होगी वो तब होगी जब वो बाजार में विक्रय के लिए उपलब्ध हो। अगर गोडाउन में वो पड़ा हुआ है तो वो बात नहीं बनेगी, विक्रय के लिए वो बाजार में होनी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत डिटेल में इसमें बताया गया है। अब आप देखिए कि एक बात और है कि अभी कहा गया कि -7.5, ठीक है, तो ये जो -7.5 है ये किन तीन महीने का है? अप्रैल मई जून पहली तिमाही होगी, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरी तिमाही हो गई, ये दूसरी तिमाही का है, जुलाई अगस्त सितंबर का। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का आना है, ठीक है। तो अभी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो इसमें त्योहार आए हैं और त्योहार में खूब सारी बिक्री हुई है, तो लोगों को यह भ्रम होता है कि चूंकि खूब सारी बिक्री हुई है तो इसीलिए ये जो हमारी जीडीपी है वो बेहतर हो गई है। नहीं, जो भी सामान अक्टूबर में बिका, दिवाली की वजह से नवंबर में बिका, जीडीपी में क्या कहा गया है? प्रोडक्शन। तो बिक ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रहा है, लेकिन स्वाभाविक है इसका प्रोडक्शन कब हुआ होगा? जुलाई अगस्त सितंबर में ही तो हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आज कार की मांग हो रही है और फिर प्रोडक्शन हो रहा है और सप्लाई की जा रही है, इसका प्रोडक्शन तो पहले हो चुका है ना। यानी कि जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो सामान बिक रहा है, इसका जो प्रोडक्शन है वो अभी जो हमारी दूसरी तिमाही है उसमें हो चुका है। इसीलिए आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे जो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के जीडीपी के आंकड़े आएंगे वो बहुत बेहतर ही होंगे, क्योंकि जो इसमें बिक्री हुई है सामान की, उसका जो प्रोडक्शन है वो तो हमारी सेकेंड जो तिमाही है उसमें हो चुका है। इसको आपको समझना होगा। और जो प्री एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें यही चेक किया जाता है कि आपने उसे अच्छे तरीके से समझा है या नहीं समझा है, बस। तो दोस्तों, ये मैंने थोड़ी सी इस इकोनॉमिक्स की तैयारी की जो बारीकियां होती हैं उनके बारे में आपसे बात की है, खासकर जीडीपी के माध्यम से। अब मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: पुष्प केतु परमार, सोनी सिंह सहरसा बिहार से, नितिन चौहान, मेघा गुप्ता, साहिल प्रताप, हेमा चौधरी, आदर्श शर्मा, कुंदन कुमार चंदौली उत्तर प्रदेश से, प्रीतु ठाकुर, सलोनी संजय खत्री मध्य प्रदेश से, चंदन सिंह, खुशबू प्रजापति और दीन बंधु भद्रा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।